हरे कृष्णा। तो आप सबका आज के 23 अप्रैल के संध्या जागृति में सबका स्वागत है। तो पिछली बार हमारी रामायण की कथा उस स्थिति पे आ गई थी, किसी को याद है पिछली बार कहां पर यात्रा अपनी समाप्त हुई थी? प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र मुनि के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। विश्वामित्र मुनि के साथ उन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ में सुबाहु और मारीच को तो आकाश में उड़ाकर समुद्र में डुबाया गया। मारीच बेहोश रहा कई महीनों तक, कुछ लोग कहते हैं मारीच कई साल तक बेहोश रहा, कुछ लोग कहते हैं कई महीनों तक रहा। एनीवे हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि बहुत लंबे समय तक बेहोश रहा और फिर होश में आया और उसने रिटायरमेंट ले लिया कि अभी हमको आगे जाकर राक्षसगिरी नहीं करना है, संत बन के रहना है। इतना डर गया वो राम के बाण से, इतना डर गया कि जहाँ जहाँ र शब्द का उच्चार होने लगा वहाँ वहाँ उसको केवल एक ही काम था, थर 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 कांपने का भय से, केवल र शब्द से बस। तो वो सब राक्षसी विद्या को छोड़कर सन्यासी बन गया और सुबाहु को भगवान ने अग्नि अस्त्र बाण से उनका वध कर दिया और धराशायी हो गया वो। फिर विश्वामित्र मुनि ने अपना यज्ञ पूरा किया और विश्वामित्र मुनि अगले दिन यज्ञ पूरा करके उन्होंने कहा राम लक्ष्मण को, चलो हम आगे बढ़ेंगे। जब वो आगे बढ़ते हैं तो नदी पार करते हैं, शोण नदी। और शोण नदी पार करते हुए प्रभु रामचंद्र एक विद्यार्थी के रूप में सब कुछ जानते हैं, वो सर्वज्ञ हैं वो, लेकिन फिर भी एक विद्यार्थी के रूप में मनुष्य अवतार में लीला कर रहे हैं। तो संतों के पास बैठकर कैसे पूछताछ करनी चाहिए, इसका एक वो आदर्श उदाहरण देते हैं। और बोट में बैठकर सफ़र कर रहे हैं, तभी वो गंगा मैया पृथ्वी पर कैसे आई इसका प्रश्न करते हैं। तो इसके उत्तर में विश्वामित्र मुनि जो है वो पूरे गंगा जी का अवतरण कैसे हुआ उसके बारे में कथा सुनाते हैं। वो एक रामायण के अंदर एक बड़ा अंग है उसका, पूरी कथा सुनाते हैं उनके साथ। और जब वो कथा समाप्त होती है तो रात हो जाती है, फिर वो नदी से उतरकर किनारे पे एक जगह विश्राम कर लेते हैं। प्रभु रामचंद्र जो है वो राजा के पुत्र हैं, हाँ राजपुत्र हैं। वैसे देखा जाए तो उनके चरण कभी जमुन पर नहीं गिरते हैं, राजपुत्र होने के नाते पंच पकवान सुंदर सुंदर भोजन करते हैं, अलंकार पहनते हैं और राजा के पुत्र के रूप में बड़े सम्मान के साथ में रहते हैं। फिर भी ऐसा ट्रेनिंग था उस समय लोगों को कि राजपुत्र होने पर भी जंगल में रहने की आदत, राजपुत्र होने पर भी जंगल में लकड़ी तोड़ने की आदत, कंदमूल खाने की आदत, समय पड़े तो पत्थर पर शीश रख के तकिया करके सोने की आदत, हाँ ऐसा ट्रेनिंग मिलता था। अगर ऐसा ट्रेनिंग नहीं था तो 14 साल वनवास में कैसे रहते हो, हाँ केवल अच्छे एयर कंडीशन में, नरम नरम गद्दे में, कभी ज़मीन पर पैर रखना नहीं है, अच्छा अच्छा भोजन ही खाना है, सबके द्वारा सेवा होनी है, तो फिर वो 14 साल तक वनवास कैसे करते वो? तो पुराने ज़माने में राजा के पुत्र हो या वैश्य का पुत्र हो या ब्राह्मण का पुत्र हो या किसी का पुत्र हो, वो सबको ये ट्रेनिंग मिलती थी कि जब संकट समय आएगा तो कैसे रहना है। तो ये राजपुत्र के वेश में जा रहे हैं, अभी रेशमी वस्त्र पहन के और पूरे अलंकार वस्त्र के साथ में जा रहे हैं, अभी तो वनवास में नहीं जा रहे हो। विश्वामित्र मुनि उनको राजपुत्र के रूप में लेके गए थे, वनवास में लेके गए थे, लेकिन फिर भी विश्वामित्र मुनि एक संन्यस्त विरक्त व्यक्ति है, उनके साथ में रहते हुए कोई संकोच नहीं है। अरे महाराज जी आप तो संत हैं, आपको झोपड़ी में रहने की आदत है, हम तो राजपुत्र हैं, हम महल में रहते हैं, ये कहाँ आप सुला रहे हैं हमको? नहीं, उनके साथ ही सो रहे हैं पेड़ के नीचे, उनके साथ ही कंदमूल खा रहे हैं, उनके साथ ही नंगे पैर चल रहे हैं। और ये करते करते फिर वो बहुत सुंदर नगरी में प्रवेश करते हैं। उस सुंदर नगरी का नाम है मिथिला नगरी। हाँ हमारे इसमें आप हैं ना, मिथिला नगरी में से, हाँ इनका गांव है मिथिला नगरी। वो पटना के आगे वो जो नेपाल के बॉर्डर है ना वहाँ आता है वो, उसको जनकपुरी भी कहते हैं। वो जनक राजा की नगरी है और यहाँ पर ही सीता जी का जन्म हुआ था। उसकी कहानी ऐसी है कि वो वेदवती नाम की कन्या थी, ब्राह्मण कन्या थी वो, और बड़ी तपस्वी थी वो, उनको भगवान विष्णु से विवाह करने की इच्छा थी, इसलिए वो बड़ी सुंदर थी, वो बड़ी दिव्य सुंदर था उनका, और वो जंगल में जाकर वो तपस्या कर रही थी। तो वहाँ से वो, जरा पर्दा बंद करो ना वहाँ से, वो पर्दा, हाँ थैंक यू। तो इतनी सुंदर युवती होने के बावजूद भी वो विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में तपस्या कर रही थी, और रावण उस समय, रावण का ऐसा वर्णन आता है कि रावण ने सब जगह तपस्या किए करने के बाद जो वरदान प्राप्त किए उसके आधार पर सब जगह हाहाकार मचा दिया। सब जगह जा जा के उन्होंने कष्ट लोगों को दिया, ऋषियों को कष्ट दिया, अष्टावक्र मुनि को लत्ता प्रहार किया उसके ऊपर, अष्टावक्र मुनि को लात मारी उन्होंने हंस हंस कर। अष्टावक्र यानी जिसके शरीर के अंदर 8 प्रकार के बैंड थे, मतलब हाथ का हाथ टेढ़ा, पैर टेढ़ा, कमर टेढ़ी, पैर टेढ़े, ऐसा बहुत सारा 8 जगह पर शरीर में व्यंग था उनको। लेकिन बड़े महान ऋषि थे वो, विचित्र रूप से चलते थे वो, उनका शरीर टेढ़ा होने की वजह से। तो उनको देखकर हंसे वो रावण, छद्म किया, छद्मी रूप से हंसे और लात मारी उनको। तो जहाँ जहाँ अपराध किया वहाँ वहाँ शाप प्राप्त हुआ। तो ये ऐसे ही लोगों को तंग करते करते आ रहे थे रावण। तो देखा तो अरे सुंदर युवती जंगल में, इतनी सुंदर युवती तो मेरी होनी चाहिए, अकेले क्या कर रही है यहाँ पर। तो आया उसके पास, पुकारा, हे सुंदर युवती तुम कौन हो? मैं रावण हूँ, त्रिलोक विजयी रावण हूँ, मैंने सब देवताओं को परास्त किया। ऐसा बखान करता है अपने अपने बल का, वो कितना महान है। वो कहता है कि क्यों ना तुम मुझसे विवाह करो, मैं तुम्हारे पति होने के योग्य हूँ। तो वेदवती कहती है कि मैं तपस्या करने को बैठी हूँ, मैं तो भगवान विष्णु के लिए आराधना कर रही हूँ, मतलब कोई विष्णु विष्णु कुछ नहीं, मैं हूँ ना आपके सामने हूँ, विष्णु तो बड़ी दूर की बात है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, इतना सौंदर्यवान हूँ, विद्यावान हूँ, बलवान हूँ, सब कुछ हूँ, मेरे पास तीनों लोगों का साम्राज्य है, विष्णु को लेकर क्या करोगी तुम? और इतना कहते वो ऐसा उसको स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ता है। तो तुरंत वेदवती इतनी शक्तिशाली होती है, साध्वी मतलब जिसको साधुता का बल है, उसके अंदर पवित्रता का बल है, एक मंत्र का उच्चारण करती है और अपने शरीर से अग्नि उत्पन्न करती है, अपने आप को जलाकर भस्म कर देती है, उसको स्पर्श करने के पहले ही, अशुद्ध होने के पहले ही भस्म कर देती है, और भस्म होने के पहले उसको शाप देती है कि तूने मेरी पावित्र भंग करने का प्रयत्न किया है, मैं अगला जन्म लेकर तेरे मृत्यु का कारण बनूंगी। ऐसे बोल के उसकी शरीर को भस्म हो जाता है। तो रावण एकदम दंग रह जाता है, अरे अभी तो मैं एकदम काम भावना के वश में आकर, पूरा रोमांटिक मूड में आकर बढ़ रहा था आगे, और यह क्या हो गया, अचानक दंग रह गया वो। लेकिन शाप प्राप्त हुआ उसको भी, चला गया। अरे इतना नहीं, यहाँ से शाप प्राप्त हुआ, थोड़ा आगे बढ़ा तो उसको रंभा जो थी, रंभा जो देवताओं की स्त्री है, वो कुबेर के 2 पुत्र हैं, नल कुबेर और मणिग्रीव, तो नल कुबेर की पत्नी है वो, तो वो नदी में मंदाकिनी में स्नान कर रही थी। तो ये यहाँ से गुजरे, यहाँ से शाप प्राप्त हुआ, वेदवती का क्या कहते हैं उसको, तपोभंग किया उन्होंने, विनय भंग भी किया, और आगे बढ़े तो रंभा को देखा, वो स्नान कर रही है, तो वहाँ पर जाकर कुछ बात बात नहीं किया, झपट पड़ के उसको बलात्कार किया। तो बहुत चिल्लाई रंभा देवी, रंभा देवी स्वर्गीय स्त्री है, बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत पवित्रवान ब्राह्मण पत्नी है वो, बहुत पुकारती जोर जोर से, तो उसकी पुकार उसका पति सुनता है, नल कुबेर। लेकिन नल कुबेर जो है वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको खबर मिली है अभी अभी मेरे पिताजी को परास्त करके ये व्यक्ति आया हुआ है। वेदवती को कब मिलता है वो? जब कुबेर को परास्त करके, कुबेर का पुष्पक विमान छीन कर वो वहां पर आते रहता है, तब वेदवती को मिलता है। वहां से आगे बढ़ता है और रंभा को बलात्कार करता है। तो नल कुबेर को कैसी हिम्मत हो रही है, होगी कि मेरे पिता को परास्त कर दिया उसने अभी, तो वो वहीं से बैठे बैठे शाप देता है कि अभी बलात्कार किया है इच्छा विरुद्ध, अभी अगले किसी भी स्त्री को अगर वो स्पर्श करेगा, उसकी इच्छा के खिलाफ स्पर्श करेगा तो तुरंत मर जाएगा, तो शाप देता है वो, और वो शाप सुनाई पड़ता है रावण को, ब्राह्मण का शाप है वो, असहाय अवस्था में दिया हुआ शाप है, अगतिक होकर। फिर आगे बढ़ता है, और फिर जाता है रावण लंका में। ऐसे कहते हैं कि रावण को 18 शाप थे, 18, कई स्त्रियों का उसने विनय भंग किया था। तो उसके बाद में ऐसा कहते हैं ना कि अगर हमारे पास बहुत विद्या है, बहुत शक्ति है, बहुत पावर है, बहुत अधिकार है, लेकिन संतों का अगर आशीर्वाद नहीं है तो सब हमारे वरदान बेकार है। और हमारे पास बहुत वरदान होने पर अगर संतों का आशीर्वाद के बदले में अगर संतों का शाप है तो इतना सब होने पर भी विनाश निश्चित है। इसलिए हमारे पास धन कितना है, शक्ति कितनी है, पावर कितनी है, लोग हमारे कितने साथ में है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। कितने साधु हमारे से प्रसन्न हैं, कितने भक्त लोग हम पर कृपा करने को तैयार हैं, हमारी सेवा से प्रसन्न हैं, ये जीवन के यश का रहस्य है। इसलिए हमेशा भगवान का नाम जप करते हुए भगवान के भक्तों की सेवा करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि कलयुग के दो धर्म हैं मेन, एक भगवान का नाम का जप और दूसरा भगवान के भक्तों की सेवा करके संतुष्ट करना। ये दो अगर आप करते हो तो अगर आप गरीब भी होंगे, अनपढ़ भी होंगे, कुरूप भी होंगे और कोई प्रभाव नहीं है आपका, दुर्बल होंगे आप, फिर भी आप यशस्वी हो भगवान की दृष्टि से, क्योंकि भगवान आपको सब संकट से तारेंगे और आपको कोई छू नहीं सकता है। दुर्बल होने पर भी आपको कोई छू नहीं सकता है। खैर, तो उसके बाद में वेदवती जो है दशरथ महाराज, सॉरी जनक महाराज, मिथिला नरेश, हाँ बताए ना इनके गाँव के ऊपर जो गाँव है, शहर है मिथिला, बहुत दिव्य नगरी है वो। उसमें दशरथ जनक महाराज जो है अपने यज्ञ करने के लिए जमीन को नांगर चला रहे थे उसके ऊपर। यज्ञशाला जब करते हैं ना, यज्ञशाला तो कई किलोमीटर लंबी होती है, कई मील तक उसका विस्तार होता है। हम लोग तो भी भक्ति वेदांत में जब यज्ञ करते हैं तो थोड़े से 15x15 फुट के अंदर तंबू लगाते हैं, उसके अंदर एक कुंड बनाते हैं। लेकिन पुरातन काल में जब यज्ञ होता था तो उसे शहर के शहर यज्ञशाला हुआ करती थी, उसके अंदर हजारों कुंड बनाते थे और हजारों ऋषि मुनि बैठकर एक ऋषि मुनि के नेतृत्व में यज्ञ किया करते थे। तो उसके पहले राजा अपने क्षत्रिय सैनिकों के साथ में जमीन पर नांगर चलाया करता था मशागत करने के लिए। दशरथ, सॉरी बार बार उनका ही मुंह आ रहा है, नाम आ रहा है। तो जब जनक महाराज नांगर चला रहे थे तो उनके नांगर चलाते समय, हल चलाते समय अचानक उनको एक सुनहरी कन्या नजर आई जमीन के अंदर, जमीन के छेद के अंदर एक सुनहरे रंग की तेजायमान प्रकाशमान स्वर्ण के रंग की एक कन्या नजर आई। उस समय आकाशवाणी हुई कि ये वेदवती है जिसने तुम्हारे कुल में पुत्री के रूप में आना स्वीकार कर लिया है, इसलिए इस कन्या को तुम ले लो और कन्या के रूप में उसका लालन पालन करो। तो चूंकि वो जमीन के छेद से आई थी इसलिए इसका नाम सीता पड़ा। सीता का अर्थ यही है कि जो छेद से आई हुई है। तो सीता जी का जन्म ऐसे हुआ है मिथिला नगरी में, बहुत पावन नगरी है वो, क्योंकि भगवान की जो सखी होती है, भगवान की जैसे राधा कृष्ण, सीता राम, लक्ष्मी नारायण, इसमें नारायण से अधिक बल होता है लक्ष्मी का, क्योंकि नारायण जो है लक्ष्मी के प्रेम में नियंत्रित रहते हैं, राम जो है वो सीता जी के प्रेम में नियंत्रित रहते हैं, कृष्ण भी जो है वो राधा के प्रेम में नियंत्रित रहते हैं। इसलिए कृष्ण को, राधा रानी को भी कृष्ण स्वामिनी कहा गया है। कृष्ण सबके स्वामी है लेकिन उनकी भी एक स्वामिनी है जिनके प्रेम के वश वो सब कुछ करते हैं, जो कहते हैं वो कर देते हैं। तो ये सीता जी बड़ी, जब बड़ी हुई तो एक दिन उनके राज्य में ना एक अद्भुत घटना हुई थी, बहुत पीढ़ियों के पहले, जनक राजा के कई पीढ़ियों के पहले एक राजा हुए देवव्रत। हाँ, वो देवव्रत राजा जो थे उनके समय ऐसी घटना हुई कि उन्होंने एक यज्ञ किया देवताओं ने मिलकर, और उसमें शिवजी को उन्होंने आह्वान नहीं दिया। यज्ञ में कैसा होता है, सभी देवताओं को पुकार कर उनके लिए आहुति अर्पण करनी होती है, तो उन्होंने शिवजी को छोड़कर सबको बुलाया। तो शिवजी को बड़ा क्रोध आया, शिवजी अपना शिव धनुष लेकर आए और अपने धनुष से सबको भस्म करना उन्होंने चालू कर दिया। तब जाकर सब देवता उनको शरण गए, शरण गए और माफ़ी मांग लिया उन्होंने और उनका जो आहुति उनको अर्पण कर दिया। तो प्रसन्न होकर शिवजी ने क्या किया, अपना वो भयंकर धनुष जो था शिव धनुष वो देवताओं को भेंट में दे दिया कि आप ले लो उसको। फिर देवताओं के पास रहा वो धनुष, वो इतना भारी धनुष था कि उसके ऊपर भगवान की लीलाओं का कोरीव काम किया गया था, समझो भी कोई पत्थर है, उसके अंदर हमने कोई डायरमा बना दिया भगवान की लीला का, यहाँ बना दिया एक, वहाँ बना दिया एक, वहाँ बना दिया, ऐसे शिव धनुष के ऊपर आकृति बनाई गई थी भगवान की लीलाओं की, साथ साथ में हीरे जवाहरात मोती सबका श्रृंगार भी किया गया था उसको, और इतना दिव्य धनुष था वो, 300 आदमियों को भी एक साथ में उसको उठाना नामुमकिन था। तो वो धनुष जो है आखिर बाद में जाकर देवासुर संग्राम में देवव्रत राजा ने देवताओं को बहुत सहायता किया राक्षसों के युद्ध के बीच में, तो उस प्रसन्न होकर देवताओं ने वो धनुष जो था वो जनक महाराज के जो अग्रज थे, मतलब क्या कहते हैं उसको, पूर्वज थे देवव्रत राजा, उनको भेंट में दे दिया। तो तब से उनके वंश में ये धरोहर चली आती है कि वो धनुष जो है एक राजा फिर दूसरे राजा के पास फिर तीसरे राजा के पास है, वही वो लेकिन राजा बदल रहे हैं। तो इतना बड़ा धनुष था वो, उसको एक बड़े पेटी में रखा गया था, और जब भी कोई उत्सव हुआ करता था तो 300 बहुत बड़े बड़े शरीर वाले पहलवान जो थे वो उसको उठाने के लिए आते थे, और ऐसा वर्णन आता है कि वो जब उठाते थे उसको तो 2 कदम उठाकर 300 लोग उसको रखते थे और विश्राम करते थे, और फिर 300 लोग फिर उठाते थे, फिर 2 कदम चल के फिर विश्राम करते थे, इतना थकते थे वो। ऐसा धनुष वहां पर उनके पास था, और वो जनकपुरी राजा की, क्या कर रहे प्रभु जी आप, कुछ मत करो अभी, छोड़ो उसको आप, जस्ट लीव इट, अभी करने का समय नहीं, डिस्टर्ब करने का समय नहीं। तो क्या कह रहा था मैं, ऐसा भयंकर धनुष था वो जनकपुरी राजा का एक ऐसा प्रतीक था कि हमारा ऐश्वर्य का एक प्रलक्षण था वो, जैसे हमारे राज्य में जैसे कि कोहिनूर हीरा था पहले, भवानी तलवार थी, तो राज्य का एक गौरव है ना वो, वैसे जनकपुरी का गौरव था शिव धनुष। ठीक है, एक दिन सीता देवी छोटी सी थी और छत पे खेल रही थी, और खेलते खेलते सीता देवी ने क्या किया, वो धनुष को एक हाथ से उठा लिया, ऐसे ऐसे खेला बच्चों की तरह, फिर रख दिया उसे। तो राजा जनक ने देखा, अरे 300 मेरे पहलवान उसको उठा नहीं सकते हैं, एक एक कदम से पसीना निकलता है उनका, और ये मेरी छोटी सी कन्या जो है उसको ऐसा खिलौने में उठा रही है, भाई किसी को देख, ऐसा नहीं कि भाई आ जाओ मैं खेलने वाले हूँ आ जाओ, ऐसा नहीं, खेल खेल में अपने आप उठा लिया ऐसे, तुम जो मैं अभी खेल ऐसा बात करते करते करताल को उठा लिया तो कल के पेपर में न्यूज आएगी क्या कि विश्वरूप दास ने कथा करते करते करताल उठा लिया, फोटो आएगा उसका, कैसे उठाया, कितना बल है उनके अंदर, अरे तो करताल है इसमें क्या है। इतनी ही आसानी से उन्होंने वो शिव धनुष उठाया, यहाँ वहाँ किया उसको, रख दिया उसको नीचे। जनक महाराज बड़े दंग हो गए, अरे बाप रे इतनी शक्ति उसके अंदर, उसको पति कहाँ से लाऊंगा मैं अभी पति कहाँ से मिलेगा इसको, अरे 300 पहलवान लोगों की हालत खराब हो रही है। तो उन्होंने मन में ठान लिया कि अभी कोई देवता भी उसको उठा सकता नहीं, तभी एक ही व्यक्ति उठा सकता है, वो है विष्णु स्वयं। अगर विष्णु को अगर बुलाना है तो ऐसा ही कुछ प्रण करना पड़ेगा ना स्वयंवर का। तो तभी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि ये शिव धनुष को जो उठाएगा और जो दूरी लगाएगा, मतलब प्रत्यंचल चढ़ाएगा उसके ऊपर, और उसको बेंड करेगा, मतलब उसको क्या करेगा, उसको क्या बोलते हैं, उसको घुमा देगा, उसको बाण चला बाण चढ़ाएगा उसके ऊपर, वह व्यक्ति को मेरा कन्या का हाथ मैं प्रदान करूंगा, विवाह हो जाएगा उसके साथ। लेकिन ये कन्या जो थी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उसको वैसे ही देखकर बहुत लोग मोहित हो गए थे कि मेरी पत्नी होनी चाहिए। बहुत सारे राजकुमार, बहुत सारे राजा जनकपुर में बड़ी आशा से आए कि मुझे सीता जी का हाथ मिलेगा तो कितना अच्छा होगा। लेकिन आने के बाद उनको शॉकिंग न्यूज़ मिला कि धनुष को उठाना पड़ेगा इसको शादी करना है। तो फिर भी उन्होंने कोई बात नहीं, उनको अपने अपने बल पर गर्व था बहुत, आगे वो भी हाँ सब लोगों ने अपना अपना प्रयास किया। तो बोलते हैं कि 1 सेंटीमीटर भी मिलीमीटर भी हिला नहीं पाए वो, इतने राजा आके प्रयास किया, तो एक आया परास्त हो गया, दूसरा आया परास्त हो गया, तीसरा आया परास्त हो गया। तो उनको लगा कि राजा का कोई षड्यंत्र है इसके अंदर, सबका अपमान करने का कोई प्लान है इसके अंदर। हाँ ऐसा कोई प्रण रखते है क्या, मुझे बॉम्बे का कोई लड़का है और किसी लड़की शादी करने बोल रहा है कि वो पहाड़ पहले उठाना पड़ेगा आपको, फिर शादी करेंगे मेरे लड़की साथ, तो आपको लगेगा कि ये मजाक कर रहा है, मतलब व्यंग कर रहा है, उपहास कर रहा है, अपमान करने का प्रयास कर रहा है, ऐसी कोई वस्तु करने को बता रहा है जो करना मुमकिन ही नहीं है, और जानबूझ के लोगों का बुला बुला के अपमान करने के लिए ऐसी व्यवस्था करके रखा है। तो उनको ऐसा मन में आता है कि हम राजकुमार हैं, क्षत्रिय है, और हम लोगों का अपराध करने के लिए जनक महाराज ने ऐसा योजना बना के रखा है। तो उनको सबको ना, हारने वालों को सबको गुस्सा आता है, सब लोग एकत्र मीटिंग करते हैं, बोलते सब लोग, अब सब लोग मिलकर जनक राजा के नगरी पर हमला कर देते हैं बदला चुकाने के लिए। तो जनक महाराज एक साल तक इन सभी हारने वाले राजाओं के साथ युद्ध करते रहते हैं, एक साल तक युद्ध कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि एक आया हार गया वो भी हमला कर रहा है, दूसरा आया हार गया वो भी हमला कर रहा है। तो राजा जनक जो है बड़े पराक्रमी थे, फिर भी उनका एक साल गया उसके अंदर, और बहुत सारे राजा एकत्र होकर हमला करने लगे तो वो परास्त होने लगे। तो उन्होंने देवताओं की सहायता मांगी, तो देवताओं ने सहायता किया और फिर युद्ध समाप्त हो गया। देवताओं की इतनी विशाल दिव्य सेना को देखकर ये सब पृथ्वी के राजा जो है भाग गए और फिर युद्ध शांत हो गया। तो जनक महाराज को और एक बात का बहुत मतलब चिंता हुई, अरे अगर ऐसा होने लगा कि पूरे पृथ्वी पर कोई लड़का ही नहीं तो मेरी लड़की की शादी किसके साथ होगी, फिर ऐसे घर में पड़ी रहेगी कन्या के रूप में, एक तो ऐसा प्रण बनाया है वह आएगा कौन, तो बड़ी चिंता में लगे हो, अरे लड़की तो ऐसे ही रह जाएगी हमारी। और बीच में रावण आए, रावण में सुना था सीता का गौरव, उसके सौंदर्य का गौरव, और उसके मन में ऐसा विचार था कि दुनिया की हर एक सुंदर वस्तु मेरी होनी चाहिए, एवरी ब्यूटिफुल थिंग शुड बिलोंग टू मी, उसी भाव से आया था। और वर्णन ऐसा आता है कि रावण भी उस धनुष को एक इंच भी हिला नहीं सका, उठाने की बात तो दूर ही रही, इतना बल था उसके पास, फिर भी वो इतना अपमानित हो गया। उसने तो कैलाश को उठाया था, शिव जी के साथ पार्वती के साथ उठाया था, फिर शिव जी ने उसके बल को, घमंड को हरण करने के लिए एक अंगूठे से, पैर से अंगूठे से, और जहां बैठे थे कैलाश पर उसको दबाया, तब ये दबने लगा, तब जाकर त्राही त्राही माँ पुकारा उसने, तब उन्होंने रिलीज किया उसको। लेकिन फिर भी शिवजी महाराज उनका बल देखकर प्रभावित हो गए, तेरे वाह क्या शक्ति है, मेरे साथ कैलाश को उठा लिया उसने, लेकिन वो धनुष को नहीं उठा पाया, चला गया अपमानित होकर। और उसके बाद में फिर विश्वामित्र मुनि जो है प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण को लेकर वहां पहुंचे। लक्ष्मण को और राम को विश्वामित्र मुनि के साथ में देखते ही बड़ा आश्चर्य हो गया जनक राजा को, अरे ये दोनों इतने सूर्य के समान तेजस्वी लड़के कौन हैं, कौन से कुल के हैं ये, क्या ये यहाँ पर स्वयंवर जीतने के लिए आए हैं क्या, कितने बाहुबल हैं उनके अंदर, कितना तेज है उनके, शक्ति है उनके अंदर, कितना सौंदर्य है। हाँ ऐसे कहते हैं कि जब वो मिथिला नगरी में प्रवेश कर रहे थे तब बहुत सारी स्त्रियां जो रस्ते में महल में अपने खिड़की में खड़ी थी वो सब मोहित हो गई। उन्होंने एकांत में राम जी से पूछा कि क्या आप हमसे विवाह करेंगे, तो प्रभु जी रामचंद्र ने कहा कि इस बार रॉन्ग नंबर है आपका, क्योंकि इस अवतार में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आया हूँ और आपके लोगों की भक्ति और प्रेम को मैं स्वीकार नहीं कर सकता, अगले जन्म में आऊँगा कृष्ण बनकर तब आप गोपियाँ बनकर आना। तो ये रास्ते में ही हो रहा था, उतना सौंदर्य था उनका राम जी का। फिर जब मिथिला नगरी में गए अंदर राज दरबार में तो वहाँ की स्त्रियाँ भी मोहित हो गई। बीच में एक बार जाने के पहले ऐसे एक वर्णन आता है तुलसी रामायण में, वाल्मीकि रामायण में उसका वर्णन नहीं पढ़ा मैंने, लेकिन उसमें वर्णन आता है कि वो अचानक बगीचे में सीता जी को मिले जहाँ उनकी सबसे पहली बार भेंट हुई। हाँ मधुबनी गाँव है वहाँ पर वो बगीचा है जहाँ पर शादी होने के पहले, हाँ इनका गांव जो है वो सीता देवी का ही सब जन्म स्थान है, सीतामढ़ी जहाँ पर जन्म उनका हुआ, हाँ मधुबनी भी है जहाँ पर उनका मुलाकात हुआ था उपवन में, बहुत सुंदर जगह है वो फूल बिनने सीता जी वहाँ पर आई थी, ठाकुर जी ऐसे ही घूम रहे थे तो उनका नजर भेंट हो गई, तो दोनों को ही पता चला कि ये हमारे इष्ट हैं और इनको पता चला कि ये मेरी सखी है, प्रिय सखी। तो बातचीत कुछ नहीं हुई, नजर हुई, हृदय में प्रेम उमड़ आया, प्रेम से विवल हो गए दोनों और चले गए। तो वहां से जब लौट रहे थे तो वहां पर भी कई कन्याएं मोहित हो गई। अरे यहां तक वनवास में जब गए थे ना तो इतना सौंदर्य उनका, ऋषि के रूप में थे वो, जटाधारी पेड़ की खाल पहने हुए थे, नंगे पैर घूम रहे थे, कुछ राज वस्त्र नहीं, कोई अलंकार नहीं, फिर भी उनका सौंदर्य इतना सुंदर था, सुंदर थे वो, इतने महान सुंदरता थी उनकी, कि ऋषि जो अपने भक्ति की चरम सीमा पर पहुंच गए थे, उनको भगवान के प्रति ऐसा प्रेम उत्पन्न हुआ कि उन्होंने कहा कि हम आपकी पत्नी बनना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगले जन्म में आप ऋषि जारी गोपी बनना और आपकी इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा। इतने सुंदर थे भगवान। तो फिर दशरथ जनक महाराज बड़े आश्चर्यचकित हो गए। विश्वामित्र ने उनका सत्कार किया, उन्होंने उनके चरण धोए, उनकी आरती उतारी, उनका क्षेम कुशल पूछा, उनको भोजन कराया, विश्राम कराया, और विश्राम करने के बाद पूछा कि आपके आने का प्रयोजन क्या है, क्या आपने इन दोनों राजकुमारों को स्वयंवर जीतने के लिए लाया है? ऐसे अपने ही मुंह से बात बोल लेते हैं। तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि वो आपके राज्य में धनुष्य है, ऐसा उन्होंने सुना था, और बालकों के मन में कुतूहल था कि हमको देखना है वो, तो हम दिखाने के लिए लाए उनको। तो अच्छा, तो बड़े मन ही मन में उनको फवारे फूटने लगे, अरे कोई अभी हमारे प्रण को जीतने वाला आ सकता हो सकता है यही व्यक्ति, क्योंकि उनको देखकर मन में ऐसी भावना हो रही थी कि यही विष्णु है, ऐसा लग रहा था उनको मन में, लेकिन पता तो नहीं है कि विष्णु है, लेकिन ऐसी भावना हो रही थी कि यही विष्णु, क्योंकि उनको नारद मुनि ने एक बार आके कहा था कि ये साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार है और साक्षात विष्णु मनुष्य बनकर इसके साथ विवाह करने के लिए आएंगे। नारद मुनि ने बहुत पहले उनको एक बार कहा था। तो उनको ऐसा आश्चर्य हो रहा था कि कैसे रूप में आएंगे, कब आएंगे, मनुष्य रूप में कैसे विष्णु दिखेंगे, ऐसा बड़ा कुतूहल था उनको। तो ये सुंदर बालकों को देखकर उनको लगा कि यही शायद विष्णु का अवतार है। तुरंत उन्होंने धनुष को निकालने का आदेश दिया। जो 350 पहलवान लोग आए, उन्होंने दो दो कदम लेकर धीरे 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 उसको आगे किया और सभा मंडप में लाया, और विश्वामित्र मुनि ने कहा जाओ दर्शन करके आओ। तो ये गए और उसको खोला गया, उसको जैसे खोला पेटी को, तो इतना अनंत सूर्यों का प्रकाश ऐसे बाहर आया, तो उसको देखकर सब लोग ऐसे आंखें चौंधिया हो गई। और जब ये धनुष को निकालने का प्रसंग होता था ना, तो गांव के सब लोग, शहर के सब लोग आते देखने के लिए, क्या हो रहा है, कुछ घटना हो रही है, मतलब धनुष को निकाला जा रहा है, मतलब क्या कुछ उत्सव है या कोई बड़ी घटना हो रही है। जैसे धनुष निकालने का खबर आई, सब मिथिला नगरी इकट्ठा हो गई वहां पर। देखा दो बड़े सुंदर वीर पुरुष, वीर बालक वहां पर खड़े हैं, विश्वामित्र मुनि आए हुए हैं, उनको दर्शन किया जा रहा है धनुष का। पेटी खोलने के बाद इतना तेज प्रकट होता है, तो राम जी आगे जाते हैं, बड़े नम्रता से प्रणाम करते हैं, क्योंकि शिव जी का धनुष है वो। हाँ, ये साधारण धनुष नहीं है, धनुष किसका है, जैसे अभी ये चश्मा है समझो यहाँ पर रखा हुआ है, तो चश्मे की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो महात्मा गांधी का चश्मा है तो फिर कितना वैल्यू आएगा उसको। अरे इसको महात्मा गांधी ने पहना था उस समय, तो लोग बोले अच्छा अच्छा ऐसा है क्या, वो ऐसा बोलेंगे। तो बाकी चश्मे को कोई वैल्यू रहती नहीं है, लेकिन चश्मा अभी किसका है इसके ऊपर उसकी वैल्यू रहती है। तो वैसे शिव जी का धनुष है, इसलिए राम जी बड़े नतमस्तक हो गए, प्रणाम किया उन्होंने, बड़े गंभीर हो गए वो। फिर उन्होंने विश्वामित्र मुनि को देखा, विश्वामित्र मुनि नजर से उनको इशारा किया कि उठा लो। तो उन्होंने बहुत गंभीर, वाल्मीकि मुनि वर्णन करते हैं कि जितने भी राजा आए धनुष को उठाने के लिए, वो सब गर्विष्ठ थे, उनको लगा था कि हम उठाएंगे उसको, ऐसा गर्व से आए थे वो, इसलिए कोई उठा नहीं पाया। लेकिन परम भगवान स्वयं जब मनुष्य बनकर आए, तो एकदम नम्र होकर प्रदक्षिणा किया उन्होंने, उसका प्रदक्षिणा करके वंदन किया उसको और झुककर प्रणाम किया, और फिर अपने बाएं हाथ से एक ही झटके में उसको उठकर खड़ा कर दिया। और जब उन्होंने उठाया तो भयंकर आवाज हो गई, तो लोग दंग रह गए, अरे बाप रे कितना बल, बाएं हाथ से उठाया उसको, दाएं हाथ से भी नहीं, रावण ने दोनों हाथ से उसको उठाने का प्रयास किया था, लेकिन दोनों हाथ से उठा नहीं पाए थे। तब उठाया तो इतना ऊंचा उठ गया वो तेज पुंज धनुष, फिर उस पर राम जी ने उसको झुकाया और झुकाकर उसको दूरी लगाया, प्रत्यंचा कहते हैं उसको संस्कृत में, प्रत्यंचा चढ़ाया और खींचा उसको, और दूसरी ओर में उसको बांध दिया, और बांध कर एक हाथ में प्रत्यंचा और बाएं हाथ में धनुष करके उसको आकाश में उठाया, और उसको इतना जोर से खींचा कि वो ऐसे होता है ना धनुष्याकृति, मतलब ऐसे कंद सामान होता है वो, दोरी ऐसी सीधी होती है, उसको इतना खींचा कि पूरा एक गोल बन गया, सर्कल वर्तुल बन गया उसका, और ऐसा पकड़ के खींच के रखा, सब लोग एकदम से स्तब्ध हो गया, अभी क्या होगा आगे इसके। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। तो अचानक राम जी ने उसको और खींचा तो बीच में टूट गया वो, इतना बड़ा धनुष और इतनी बड़ी ध्वनि हो गई उसकी कि 14 लोकों में ध्वनि पहुंच गई उसकी, स्वर्ग लोक तक, ब्रह्मा लोक तक पहुंच गई। और इतना भयंकर आवाज आया कि ब्रह्मा लोक में लगा कि अरे प्रलय काल आ गया, सब देवता लोग भाग भाग के आ गए आकाश में, क्या हुआ, तो प्रलय का समय तो नहीं है, लेकिन अभी इतना भयंकर ध्वनि क्यों हो रहा है। जंगल में से शेर हाथी सिंह बड़े बड़े हिंस्र प्राणी जो है वो गुफा में से भाग के बाहर आ गए, डर के मारे चिल्लाते हुए रोते हुए बाहर आ गए। और जैसे ही धनुष का आवाज आया, जितने लोग दरबार में इकट्ठा हुए थे देखने के लिए, वो सब बेहोश हो गए, सब वहीं के वहीं गिर गए, कुछ ऊपर से नीचे गिर गए, कुछ वहीं से वहीं गिर गए, कुछ के ऊपर और कुछ लोग गिर गए, ऐसे भयंकर ध्वनि हो गई, सब लोग बेहोश हो गए। ये आवाज सुनकर महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी दो ध्यान कर रहे थे, उनका ध्यान भंग हो गया। अब महेंद्र पर्वत बहुत दूर है वहां से, उनको बड़ा गुस्सा आया, अरे ये तो शिव धनुष का आवाज है, अरे किसकी इतनी हिम्मत जिसने शिव धनुष को तोड़ दिया, वो तो जनक राजा के पास में है, जनक राजा की इतनी हिम्मत कि धनुष को तोड़ दिया उन्होंने। तो वहां से निकले वो सीधे, बाय द वे बहुत लंबा सफर है उनका, तो यहां पर जैसे ही धनुष को तोड़कर प्रभु रामचंद्र खड़े हो गए तो देवताओं ने देख लिया कि अरे हमारे प्रभु जो है वो मनुष्य के रूप में अवतार लेकर पृथ्वी पर लीला कर रहे हैं और शिव धनुष तोड़कर अभी सीता जी का हाथ स्वीकार करने वाले हैं। तुरंत पुष्प वृष्टि किया उन्होंने, फूलों की वृष्टि किया, मैंने बताया ना बहुत फूल होते हैं वहाँ पर जो मुरझाते नहीं हैं, बहुत लंबा स्टॉक होता है, जब चाहे वो खुशी के मौके पर उसको बहाते रहते हैं। और फिर तुरंत सीता देवी ने अपने पिताजी को देखा, सीता देवी भी देख रही है इतनी देर से जब वो सब लीला हो रही है तो सांस रोक के देख रही है, क्या करेंगे अभी ये, हाँ उठा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, उठाना चाहिए इनको, मेरा दिल तो उनके पर आ गया है, अभी उठाना चाहिए, पिताजी ने प्रण करके रखा है तो उनको उठाएंगे तो ये हाथ प्राप्त होगा उनका, तो वो भी प्रार्थना कर रही है भगवान को कि इनसे उठ जाए तो अच्छा है। और जैसे ही वो उठ जाता है तो सीता देवी के आनंद इतना होता है, पिताजी को देखती है, पिताजी कहते आ जाओ फूल माला लेकर आ जाओ, तो फूल माला लेकर नीचे आ जाती है। और ऐसे कहते उस समय सीता जी की उम्र 6 साल की थी और प्रभु रामचंद्र 12 साल के थे। मारिच ने कहा था ना, अरे रावण जब मुझे राम ने बाण मारा था तो मैं 800 मील आकाश में उड़कर समुद्र में गिर गया था और कई महीने तक बेहोश रहा था। अरे रावण उस समय तो प्रभु रामचंद्र 12 साल के थे, आज वो 24 साल के हैं, ध्यान में रखना इस बात को। 12 साल की उम्र में इतना बाण मारा था तो मेरी हालत हो गई थी, आज तो 24 साल का नौजवान है वो। तो ये घटना ना वहीं से तो आगे आ रहे हैं, वो 12 साल की उम्र में थे, सीता देवी 6 साल की थी, वो तो छोटी सी थी वो। तो सीता देवी को पिताजी ने आदेश दिया कि उनको माला पहना दो। तो प्रभु रामचंद्र विश्वामित्र मुनि को देखते हैं, वो कहते तो ये तो बात नहीं हुई थी हमारी, हमारी बात तो केवल धनुष को देखने की हुई थी, अगर ये करना है तो मुझे विश्वामित्र की सलाह करनी पड़ेगी। तो विश्वामित्र मुनि खड़े होते हैं, कहते कि प्रभु राम हमारी भी यही इच्छा है कि तुम्हारा विवाह सीता जी के साथ हो जाए, और सीता देवी अभी माला लेकर आपके सामने खड़ी है तो आपको उस माला को स्वीकार करना है। देखो जीवन में बड़े से बड़ी घटना होती है ना, भक्त लोग साधु के संदेश साधु के उपदेश से करते हैं। राजा हुआ तो क्या हुआ, राजा जो है ब्राह्मण के सामने नतमस्तक होता है, ब्राह्मण गरीब होता है, राजा धनवान होता है, शक्तिशाली होता है, सेनावान होता है, लेकिन राजा होने पर भी शिक्षा क्या है उनकी, ट्रेनिंग क्या है उनकी, राजा हुआ तो क्या हुआ, संतों के आदेश के बिना कुछ बड़ा काम नहीं करना है, अभी तो विवाह करने की बात हो रही है। तो तुरंत वो देखते हैं विश्वामित्र मुनि को, विश्वामित्र मुनि वहाँ से उनको आदेश देते हैं कि उनकी माला को स्वीकार करो। तो ऐसे कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र इतने लंबे थे, सीता जी का हाथ नहीं पहुँच रहा था, तो प्रभु रामचंद्र बहुत झुके उनके लिए और फिर वो माला पहनाए उनको। तो ये तो एक फॉर्मेलिटी हुआ, उसके बाद में तुरंत बैठकर डिस्कशन हुआ जनक राजा के और विश्वामित्र मुनि के बीच में। तो विश्वामित्र मुनि ने कहा कि आपकी जो दूसरी कन्या है उर्मिला, उसका विवाह लक्ष्मण के साथ में किया जाए, और बाय द वे आपका भाई है कुशध्वज, उसकी भी दो कन्याएं हैं, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो राम जी के लक्ष्मण के और दो भाई हैं भरत और शत्रुघ्न, उनके साथ में उन दो कन्याओं का विवाह किया जाए। तो तुरंत राजी हो जाते, अरे इतना बड़ा भाग्य है दशरथ के साथ, दशरथ के पुत्र है। जब मालूम पड़ा था उसको तो इतनी खुशी हुई थी उनको कि दशरथ के पुत्रों के साथ में मेरी बेटी का विवाह होगा अगर वो ये प्रण जीतेंगे तो। तो जैसे ही विश्वामित्र बोलते धड़ाधड़ वहां बोलने लगते हैं, बस आप जो कहे मैं तैयार हूं। और उनके कहते हैं कि आज ही के साथ विवाह होना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि दशरथ महाराज को तो आना चाहिए ना वहां से। दशरथ महाराज को बुलाने के लिए घोड़े भेजते हैं और कहते हैं, ऐसा वर्णन आया है कि 3 दिन लगते हैं उनको वहां से घुड़सवारों को। उनको कहा जाता है कि जल्द से जल्द पहुंचना है आपको, हाँ फास्ट बोलते ना, फास्ट ट्रैक मेल, स्पीड पोस्ट आराम से जाना नहीं है, बहुत अभी उतावल हो गए ना वो कि मेरी बेटी के लिए वर मिल गया, अभी वो प्राण जीत कर प्राप्त करने वाला वर मिल गया, तो फिर हमको चाहिए, जल्दी से जल्दी जाओ। तो 3 दिन के बाद पहुंचता है वो 3 घुड़सवार और वहां पहुंचते हैं। फिर दशरथ महाराज को बताते हैं, वो इतने खुश हो जाते हैं कि विश्वामित्र मुनि ने इतनी बड़ी कृपा की हमारे ऊपर। एक तो जंगल में लेने समय मैं ना कह रहा था उनको, लेकिन जंगल में ले गए, इतने अस्त्र शस्त्र दिए उनको, और हमारे बालकों का पराक्रम भी सबके लिए मालूम हो गया कि अरे बालक नहीं है फिर भी ये इतने वीर है कि सुबाहु, ताड़का और मारीच का भी उन्होंने खंडन कर दिया। बड़े खुश थे वो। उसके बाद पता चला कि सीता देवी का अभी हाथ भी प्राप्त होने वाला है, तो तुरंत वहां से निकलते वो। और जब कोई राजा निकलता है ना तो अनंत करोड़ों सेना लेके निकलता है, अनंत करोड़ों गाय, धन दौलत, सेवक, ब्राह्मण, गाने वाले, ऐसे पूरे शहर ही निकलता है वहां से। और 7 दिन के बाद पहुंचते हैं वो दशरथ महाराज। और ऐसे कहा है कि दशरथ महाराज इतने खुश थे कि उन्होंने जितने ब्राह्मण मिले उनको रास्ते में आते जाते पहुंचते पहुंचते हर एक ब्राह्मण को 1,00,000 गाय दान दिया उन्होंने। तो कितना गाय लेके चले होंगे अपने घर से, और कितना गाय घर पे हो गया उनके सोचो आप जरा। अभी आप कहीं से जा रहे हो तो पूरा थोड़ी घर लेके जाते हो अपना, थोड़ा सामान लेके जाओगे ना। तो वो थोड़ा सामान उनका इतना था कि 1,00,000 ब्राह्मण को 1,00,000 गाय दान दिया उन्होंने। तो वो थोड़ा सामान था, तो सामान कितना होगा उनके घर पे, वो भी सभी गायों के ऊपर जेवर, हरे मालाएं, घंटी, सब सोने की सिंग लगे हुए थे उनके ऊपर, घोंगू लगे हुए थे पाए के ऊपर, ऐसे गायों को दान दिया उन्होंने। दशरथ महाराज ने उस ब्राह्मणों से अधिक कितनी बड़ी भेंट तो जनक महाराज को दिया। जनक महाराज ने स्वागत के रूप में कोई भेंट देने के पहले ही दशरथ महाराज ने उनको भेंट दिया कि आपने कितनी बड़ी खुशी की खबर भेजी हमारे लिए कि हमारे बेटे ने आपके यहाँ कर आपकी लड़की का प्रण जीत लिया, हमारे लिए कितनी खुशी की खबर है। इसलिए पहले उनको भेंट दिया उन्होंने, फिर जनक महाराज ने अपनी तरफ से उनको भेंट दिया। हाँ, सैकड़ों सैनिक खड़े ले रहे हैं भेंट उसको, इतनी बड़ी भेंट है वो, 100 पीपल आर कैरिंग। हाँ, कि ले भाई लो, मैं हाथ लगाता हूँ, तुम स्वीकार करो, कोई अंदर ले लो ऐसा ऐश्वर्य था उस समय। हाँ, हम तो अभी 1 हीरा 2 हीरे गिन गिन के देते, भाई 2 हीरे इतनी कॉस्ट है इसकी 2 हीरे दिया मैंने शादी में, दहेज में 2 हीरे, ऐसा आजकल का गरीबी का कलयुग का स्थिति है। लेकिन त्रेतायु की बात कर रहे हैं हम लोग, सब लोग फिर वहाँ डिस्कस करते हैं सब लोग, और वहीं पर विवाह करने का निर्णय लेते हैं। ऐसा नहीं कि जाके क्या कहते हैं उसको, अयोध्या में जाके विवाह करेंगे, वहीं का भी विवाह होता है, चारों भाइयों का विवाह होता है। आते वक्त शत्रुघ्न भरत को भी लेके आते हैं और 4 भाइयों का विवाह 4 कन्याओं से होता है, बहुत सुंदर धूमधाम से, और कई दिन तक ये उत्सव चलता है जनकपुरी में। सभी ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता है, सब ब्राह्मण गीत गाते हैं, स्तुति पर वचन गाते हैं, मंगलमय गीत वचन गाते हैं, स्वस्ति वचन गाते हैं। बड़ी धूमधाम से प्रभु रामचंद्र का विवाह संपन्न हो जाता है, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सबका। और फिर सब लोग निकलना आरंभ करते हैं कि चलो अभी अयोध्या में चलना है। जैसे ही ये 4 पत्नियों को लेकर निकलते हैं तो अचानक कुछ अपशकुन होता है। वशिष्ठ मुनि साथ चल रहे हैं, राम भगवान सीता जी को लेकर एक रथ में बैठे हुए हैं। वशिष्ठ मुनि के जो असिस्टेंट ब्राह्मण हैं वो सब मंगलम गीत गा रहे हैं, फिर भी अपशकुन होता है। लेकिन अपशकुन होने के बाद में उनको कुछ हिरण जो है वो एक रस्ते की इस तरफ से उस तरफ जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तब वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि आसमान में बहुत सारे अपशकुनी नजर आ रहे हैं मुझे, अपशकुनी चिन्ह नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि ये अपशकुन जो है कुछ समय के लिए है, क्योंकि हिरण जो है रस्ते के एक किनारे से दूसरे किनारे जा रहे हैं। इसका मतलब कुछ समय के बाद में ये अपशकुन जो है वो टल जाएगा। ऐसे प्रभु रामचंद्र को, दशरथ को, दशरथ को चिंता है ना, अभी इतना बड़ा सुंदर घटना हुई, पवित्र घटना हुई, मंगल हुआ, और ये क्यों अपशकुन हो रहा है। कुछ कौवे रो रहे हैं और कुछ पंछी सूर्य को देखकर रो रहे हैं और कुछ गीदड़ ऐसे यहां से वहां घूम रहे हैं, ऐसे उनको अपशकुन दिखाई पड़ता है। उतने में एक भयंकर गर्जना सुनाई पड़ती है, बहुत भयंकर गर्जना। सब लोग डर जाते हैं, सब ब्राह्मण गीत गाना बंद कर देते हैं, बोले क्या हो रहा है। तो देखते तो क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत भयंकर गर्जना होती है और वहां से परशुराम जी प्रकट होते हैं। मतलब जब धनुष टूट गया तब वो वहां से निकल चुके थे, शादी होने के बाद जब बारात जा रही है तब वहां पहुंच जाते हो और वो कहते हैं कि कौन है वो बालक जिसने शिव धनुष उठाकर तोड़ने का साहस किया है। बड़े क्रोध में आते क्योंकि उनका इतिहास क्या है कि उनके पिताजी का एक राजा ने वध किया था। क्या नाम था उस राजा का? कार्तवीर्य अर्जुन। उस राजा का राजा ने उनके पिताजी जमदग्नि का वध किया था। तो उस गुस्से में आकर परशुराम जो थे उन्होंने 21 बार परशु लेकर पृथ्वी पर क्षत्रियों का संहार किया था। उनका अवतार इसलिए हुआ था, क्षत्रियों का जो उद्दंड क्षत्रिय थे, धर्म का पालन नहीं करने वाले थे, ऐसे उद्दंड क्षत्रियों का वध करने के लिए उन्होंने अवतार लिया था। उनका भय और आतंक इतना था कि उन्होंने एक ही बात तय की थी कि उन क्षत्रियों को छोड़ देंगे तो यज्ञ में बैठे हुए हैं उनको छोड़ देंगे, या जो शादी करने की घटना में व्यस्त हैं, मतलब शादी कर रहे हैं एक्चुअली विवाह कर रहे हैं, उनको छोड़ देंगे। तो जब जब घटना होती थी कि परशुराम जी आ रहे हैं, सबका वध करते करते आ रहे हैं, तो तुरंत राजा लोग यज्ञ करने बैठते थे और कुछ लोग तुरंत शादी करने में, तुरंत और एक कन्या को धारण करके विवाह संस्कार में बिजी हो जाते थे, और कुछ लोग क्या करते थे, स्त्रियों को गोल बिठाकर बीच में बैठते थे। मतलब क्या, नारी कवच, नारियों का कवच धारण करके बैठते थे तो उनको मारते नहीं थे। तो कुछ राजा थे नारी कवच टाइप, कुछ राजा थे विवाह करने वाले, कुछ राजा थे यज्ञ करने वाले, इस तरह से वो बच जाते थे, बाकी सबको राजा परशुराम देव भगवान मार देते। तो उनको लगा कि एक और क्षत्रिय बालक की ऐसी हिम्मत कि मैंने दिए हुए शिव धनुष को अपमान किया गया। तो पूछा कौन है वो बालक, तो उन्होंने कहा कि ये बालक है इन्होंने धनुष उठाया था। प्रभु रामचंद्र बड़ी शांति से नम्रता से खड़े हैं, तो उनके सामने आते हैं तो सब लोग कांपने लगते हैं, अरे बाप रे, परशुराम जी का सामना, अभी उनका क्रोध मेरे बालक के ऊपर है, दशरथ जी बहुत परेशान है, अभी हो सकता है ये अपना परशु मेरे बालक पे भी चलाएंगे। तो वो हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते हैं, फिर भी दशरथ जी के साथ वो बात नहीं करते। तो राम जी से कहते हैं कि तुमने जो धनुष तोड़ा था, शिव धनुष, वो शिव और विष्णु के युद्ध में शिव जी ने इस्तेमाल किया था, और विष्णु ने केवल एक बार युग में एक हुंकार उठाया था ऐसे हम इस तरह से, तो उस हुंकार से वो शिव धनुष शिथिल हो गया था। तो तुमने जो शिव धनुष तोड़ा, वो शिथिल किया गया धनुष को तोड़ा, मेरे पास तो विष्णु का दिया हुआ धनुष है, एक्टिव जागृत धनुष है, उसको अगर तोड़ के दिखाओगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम कुछ हो। तो दशरथ महाराज डर जाते हैं, अभी मेरा बालक क्या कर सकता है, हो सकता है भाई उसने भगवान की इच्छा से दया से तोड़ दिया, इसका कैसे करेंगे अभी, और नहीं करेंगे तो परशुराम का क्रोध का बलि हो जाएंगे मेरा बच्चा। तो बड़े चिंता में आ जाते हैं, प्रभु रामचंद्र हाथ जोड़कर नम्रता से भाषण करते हैं परशुराम जी से, और उस दिए हुए धनुष की प्रदर्शना करते हैं और वंदन करते हैं उसको, और उसको उठाते हैं बाएं हाथ से और तोड़ देते हैं सबके सामने। उस समय अचानक परशुराम जी को अपने आप में ऐसी अनुभूति होती है कि वो एकदम दुर्बल हो गए, ऐसा लगता है ना शक्तिशाली व्यक्ति का एकदम पूरा अवसान जो है वो सब नीचे गिर गया, पूरा एकदम अपने आप को कमजोर अनुभव करते हो। तब उनको भगवान विष्णु ने जो वरदान दिया था या वाणी की थी एक बार, उसकी याद आती है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कहा था कि जब तुम किसी के सामने खड़े हो जाओगे और अपने आप को दुर्बल पाओगे, तब समझना कि वो व्यक्ति विष्णु है, मैं खुद रहूंगा उस समय, मेरे किसी अलग भेष में भी मैं आपके सामने आऊंगा और आप जब अपने आप को दुर्बल महसूस करोगे तब समझ जाना कि वो मैं हूं। उस समय तुम्हारे अवतार के कार्य की समाप्ति होगी। इतने क्रोध में आए हुए परशुराम एकदम नम्र हो जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये बालक और कोई नहीं, दशरथ नंदन राम नहीं, ये तो भगवान विष्णु है। वो तुरंत दंडवत प्रणाम करते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि मैंने तो आपकी पसौटी करनी चाहिए, आप तो मेरे स्वामी नाथ है मेरे, आप तो कृपा करके माफ़ कर देना। आपके ये कार्य से, शिव धनुष तोड़ने से, विष्णु धनुष को तोड़ने से मैं ये मुझे यकीन हो गया है कि आप स्वयं विष्णु हो, इसलिए मैं अभी आपकी आज्ञा लेकर महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। इसके आगे मेरा क्षत्रिय कार्य समाप्त होता है, क्षत्रियों को मारने का, संहार करने का कार्य जो है वो समाप्त हो जाता है। इस तरह से परशुराम जी का गर्व हरण करके प्रभु रामचंद्र फिर आगे जाकर अयोध्या पहुंच जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। प्रभु रामचंद्र का चरित्र जो है इतना मधुर और इतना पावन चरित्र है, मंगल चरित्र है, विमल चरित्र है कि इसको सुनने वाले जो लोग हैं, जैसे आप लोग हैं और मुझे कहने का भाग्य मिल रहा है, ये सब लोगों का जीवन का जितना भी पाप संचय है वो सब नष्ट हो जाता है और हृदय में मंगलता पवित्रता उत्पन्न हो जाती है और भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। जन्म मृत्यु के बंधन से ऐसे कथा सुनने वालों को मुक्ति हो जाती है। ऐसी राम कथा जो है, परसों हमारे वैष्णव प्रभु यहाँ पर आए थे वृंदावन से, वो भी कह रहे थे कि जितने भगवान के अवतार हुए, यहाँ तक कृष्ण का अवतार भी हुआ है, गौरांग महाप्रभु का भी अवतार हुआ है। गौरांग महाप्रभु का अवतार तो सबसे उदार अवतार है, इतनी उदार लीला किसी ने भी नहीं किया, राम जी ने भी नहीं किया, लेकिन फिर भी सत्य यह है कि सबसे अधिक मात्रा में अगर किसका चरित्र गाया गया है वो है श्री राम जी का। जितना रामायण का पारायण हुआ है उतना ना कृष्ण के चरित्र का हुआ है, ना नरसिंह चरित्र का हुआ है, ना किसी और अवतार का हुआ है, क्योंकि रामचरित्र जो है वो एकदम मनुष्य जाति के लिए एकदम क्या कहते हैं रेलेवेंट है, मतलब सापेक्ष है एकदम। रामचरित्र की जो कथाएं हैं और उसका जो उपदेश है मनुष्य के लिए समझने के लिए बड़ी आसान है। इसलिए अभी भी आप कहीं जाएंगे तो राम राम कहने की प्रक्रिया जो है वो सब जगह एकदम ज़्यादा प्रचलित है। हम लोग सब लोग हरे कृष्ण बोलते हैं, हरि बोल बोलते हैं, वो हमारे सर्कल में इस्कॉन में सब जगह हरि बोल हरे कृष्ण चलता है, लेकिन भारत भर में कहीं जाएंगे तो जय राम जी की या राम राम क्योंकि सबके लिए प्रभु रामचंद्र का चरित्र जो है वो एकदम सापेक्ष है और समझने लायक है और पालन करने लायक भी है। प्रभु रामचंद्र जो लीला किया है वो हम और आप उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं, नकल करने के रूप में नहीं, एक आदर्श के रूप में, एक उपदेश के रूप में अपने जीवन में उतार सकते हैं। इसलिए आप सब लोग प्रभु रामचंद्र का स्मरण करते हुए, लीला सुनते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रभु रामचंद्र के ये हरे कृष्ण महामंत्र में जब हम राम का नाम लेते हैं तो राम के तीन अर्थ हैं उसके अंदर। एक राम तो स्वयं कृष्ण है, रमंती इति रामा, मतलब जो सबको रमण करते हैं, सबके आनंद में बढ़ोतरी देते हैं। दूसरे राम का अर्थ है बलराम जी, जो भगवान के भाई हैं, लीला अवतार है भगवान के। और तीसरा अर्थ है प्रभु रामचंद्र। ये तीनों के अर्थ से आप उस मंत्र को बोल सकते हैं, तीनों अर्थ से ये मंत्र बोलना परिपूर्ण है। हाँ, थैंक यू वेरी मच, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।